धवला पुस्तक चौथी लेक्चर नंबर 2 ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणं लोया लोयपयासं गोदमथेरं पुणोजिनं वीरं नम्यूणखेत्रसुत्तं जहोव एषं पयासेमो। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धवला नामक टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। इसमें जो प्रथम खंड है जीवस्थान नामक, अभी हमारी क्षेत्र की प्ररूपणा शुरू हुई क्षेत्रानुगम, अभी सत्प्ररूपणा और द्रव्य प्रमाणानुगम दो अनुयोग हो गए, अभी क्षेत्र की बात चल रही है। ये चौथे पुस्तक के पृष्ठ संख्या 8 पर हम आ गए। 8 यहाँ निक्षेपों की चर्चा चली थी, किसी भी विषय वस्तु को, किसी भी तत्व को, किसी भी द्रव्य को, किसी भी चीज को जानना है तो उसमें पहले निक्षेप बताए जाते हैं, वस्तु में होते हैं, व्यवहार के लिए होते हैं, यानी अनिर्णित वस्तु का निर्णय करने के लिए नामादि के द्वारा जो वस्तु में रखे जाते हैं उसको कहेंगे निक्षेप। या उसमें भेद भी करते हैं वस्तु में, उसको निक्षेप कहते हैं। अभी निक्षेपों में अभी एक 8 नंबर के पेज पर आ गए हम। निक्षेपों में हमने 4 निक्षेप यहाँ लगाए थे, कौन से याद है? नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। ये 4 निक्षेप तो लगाते ही लगाते, कहीं कहीं तो नाम स्थापना द्रव्य क्षेत्र काल भाव भी लगाते, परंतु ये तो 4 निक्षेप कॉमनली लगाते, सब में लगते हैं, लगाते हैं, क्योंकि वो लगाकर हम वस्तु का निर्णय करते हैं। यानी कोई वस्तु को कोई नाम रखते हैं, नाम हो सकता है कि उसके गुणों के अनुसार हो, निमित्त के अनुसार हो, या बिना किसी वजह से भी हो, ये हो सकता है। स्थापना ने एक चीज में दूसरे वस्तु की स्थापना करना कि ये चीज है ऐसा हम कह देंगे, वो हो गया स्थापना निक्षेप। द्रव्य निक्षेप में उसी द्रव्य की भूत या भविष्य की पर्याय जो है उसके द्वारा उसको वो कहने में आता है, कहीं कहीं जानने वाले जीव के शरीर को भी कहने में आता है, कर्म को भी वो नाम से पुकारा जाता है, इसलिए वो द्रव्य निक्षेप हुआ। भाव निक्षेप में तो वो वर्तमान पर्याय से युक्त
हुआ
न, जीव को कहते हैं ना,
शरीर को भी हम लोग बोलते हैं ना,
शरीर को भी कहते हैं, जीव को भी कहते हैं। जानने वाले जीव को कहेंगे ना द्रव्य आगम, आगम कहेंगे, और जो नहीं जानने वाले उनको नो आगम कहेंगे। उसमें पुद्गल भी आया, शरीर भी आया, और वो जीव भी आया जो भविष्य में जानेगा, अभी नहीं जान रहा है। और इनके अलावा कौन है तो कर्म भी है, नो कर्म भी है, उनको भी लेते हैं। ये हमेशा ये चीज चलेगी, द्रव्य क्षेत्र काल भाव। अभी अपना क्षेत्र का विषय चल रहा है, स्पर्शन में भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव निक्षेप लगाएंगे, काल में भी लगाएंगे, जो कोई अनुयोग आएंगे उसमें यही बात चलेगी। अब ये जब निक्षेप के बाद, यानी यहाँ कौन सा निक्षेप किससे प्रयोजन है, तो कहते नो आगम द्रव्य क्षेत्र से प्रयोजन है। नो आगम द्रव्य ने तद व्यतिरिक्त वाला, तद व्यतिरिक्त में कर्म भी होता है और अन्य भी होता है, यानी ये क्षेत्र एरिया उससे प्रयोजन है। द्रव्य का जो अपना विस्तार है उसको क्षेत्र कहेंगे, या आकाश के एरिया को उसको भी क्षेत्र कहेंगे, वो बात आएगी अभी आगे। अभी यहाँ जो हमने विशेषार्थ कल पढ़ा था कि निक्षेप लगाने के बाद जो हमको हमारा विषय, अभी हमारा विषय क्षेत्र संबंधी है, तो इसमें ये 6 अनुयोग द्वार से इसका विचार करेंगे। कौन सा? एक है निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान ये क्या है उसको अभी समझाएंगे। ये तत्वार सूत्र का सूत्र है। तत्वार सूत्र में पहले बता दिया समय दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग का तत्वार श्रद्धानंद सम्यक दर्शन। तो वो कैसा होता है तत्वार का श्रद्धान निसर्ग ज अधिगम जो से, तो उसके लिए पदार्थों को जानने का क्या तरीका है, प्रमाण और नयों से पदार्थों का ज्ञान होता है। इस तरह से वो सारी बातें बताते हुए पहले उन्होंने वो सत संख्या उसका भी एक सूत्र बताया, फिर ये उसको समझाने का जानने का और तरीका क्या है और विस्तार से जानने का, तो कहते निर्देश स्वामित्व साधन अधिकरण स्थिति और विधान। इसका अर्थ अब यहाँ बताएंगे, यहाँ जो शंका लिखा है ना वहाँ से पढ़ेंगे। शंका, क्षेत्र किसका है अर्थात इसका स्वामी कौन है, स्वामित्व में क्या बताते हैं, क्षेत्र किसका है, ये स्वामित्व का अर्थ होता है। निर्देश तो बता चुके ना, क्षेत्र हमने कह दिया यही निर्देश हुआ। निक्षेप में हमने उसका नाम बताया क्षेत्र, तो ये हो गया निर्देश। अब कहते इसका स्वामी कौन है, स्वामित्व में उसका स्वामी बताना है, तो शंकाकार पूछ रहे कौन है इसका स्वामी, तो कहते यह भंग शून्य है अर्थात स्वामी कोई नहीं है। स्वामी का अर्थ कहे जैसे हमें सम्यक दर्शन के बारे में जानना है तो पूछेंगे सम्यक दर्शन का स्वामी कौन है, तो चारों गति का भव्य जो संगी पंचेंद्रिय है वो सम्यक दर्शन का स्वामी है, ये स्वामित्व बताता है। अन्य भी जो कोई विषय है उसका स्वामी कौन है अगर पूछेंगे तो इस तरह से कहने में आता है। ख्याल में स्वामित्व का अर्थ क्या है, जैसे केवल ज्ञान का स्वामी कौन है, तो चौथे चौदवे तेरहवे चौदवे वाले और सिद्ध भगवान वो केवल ज्ञान के स्वामी है।
क्षेत्र
का स्वामी कोई नहीं, श्रुत ज्ञान के स्वामी कौन है, तो पहले गुणस्थान से लेकर बारहवें तक सारे श्रुत ज्ञान के स्वामी है। ये स्वामी का अर्थ क्या है वो मैं समझा रही हूँ। तो क्षेत्र का स्वामी कोई स्वामी नहीं है। अब साधन, अब साइड में लिख सकते हैं, पहले तो हमने निर्देश है वो निक्षेपों में नाम निक्षेप अगर वो निर्देश हुआ था, अब ये शंकाकार है ना उसके बाजू में दो नंबर डाल के स्वामित्व लिखो वो स्वामी हुआ। अब तीन, हाँ स्वामी के नीचे। अब साधन, साधन कहो या करण कहो एक ही बात है। तो शंका पूछ रहे हैं किससे क्षेत्र होता है, किससे यानी किसके द्वारा, अर्थात क्षेत्र का साधन या करण क्या है, यानी क्षेत्र किस कारण से होता है, किसी वस्तु का फैलाव उसका क्षेत्र किस कारण से होता है, तो कहते हैं पारिणामिक भाव से क्षेत्र होता है, अर्थात क्षेत्र की उत्पत्ति में कोई दूसरा निमित्त न होकर वह स्वभाव से है। ये जीव असंख्यात प्रदेशी क्यों है, उसका क्षेत्र इतना क्यों है, तो वह स्वभाव से है। अब चार नंबर है अधिकरण, उसको हाँ अंडरलाइन करो या चार नंबर डालो वहां पर। किस में क्षेत्र रहता है अर्थात इसका अधिकरण क्या है, यानी अधिकरण ने आधार कह दिया किस में, किस, तो कहते अपने आप में ही यह रहता है अर्थात क्षेत्र का अधिकरण क्षेत्र ही है। हम ऐसा भी देखिए कोई भी द्रव्य वो अपने आधार से रहता है ऐसा कहते हैं, तो द्रव्य का जो क्षेत्र है वो अपने में अपने आधार से, अन्य किसी आधार से नहीं है। हम आप आधार आकाश के आधार से रहते नहीं, हम अपने आधार से, हमारा क्षेत्र स्व क्षेत्र है अपने आधार से, पर के आधार से कहना ये उपचार वो नहीं है। शंका, एक ही आकाश में आधार आधे भाव कैसे संभव है, यानी हम आकाश के क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो आधा आकाश को स्वयं वो आधार है, स्वयं आधार है, ये कैसे आधे ये कैसे हो सकता है, कहते नहीं क्योंकि सार में स्तंभ है। इस प्रकार एक वस्तु में भी आधार आधे भाव देखा जाता है। स्तंभ ने खंबा, खंबा जो है पिलर, ये सार में का क्या अर्थ लेना है,
ऊपर क्या लिखा
है? सारे स्तंभ यदि एगत थवी, यानी एक ही वस्तु नहीं, स्तंभ का आधार क्या है वो स्वयं खंभा ही उसका आधार है। इस तरह
सब में सारे हैं,
खंबे का आधार कौन है? खंबा स्वयं इसका आधार है। कंक्लूजन निकालते वृक्षे सार युवा ऐसा भी आता है ना, यानी वृक्ष का जो बीच का भाग है उसको भी सार कहते हैं। अब पांचवा नंबर, पेज नंबर 8। ये निर्देश स्वामित्व की बात कर रहे थे। निर्देश यानी वो क्षेत्र, ये नाम बता दिया वो निर्देश हुआ। फिर पूछा गया था क्षेत्र का स्वामी कौन है? कोई स्वामी नहीं है। उसका साधन क्या है, क्यों होता है वो, किसके द्वारा होता है? तो पारिणामिक भाव से होता है, यानी क्षेत्र की उत्पत्ति में कोई दूसरा निमित्त नहीं है। उसका अधिकरण क्या है? तो अपने ही आधार से वो, अपने ही क्षेत्र का अधिकरण क्षेत्र ही है। ये यहां तक बात हुई थी। अब नीचे से दूसरी लाइन, शंका। स्थिति का अर्थ है वो वस्तु कितने काल तक टिकेगी। जैसे हमें, हम आपको पूछेंगे समय दर्शन की स्थिति कितनी है, तो मिनिमम अंतर्मूर्त रहेगा, मैक्सिमम साधी अनंत, अनंत का। इस तरह से उसको हम देख सकते हैं। तो कितने काल पर्यंत क्षेत्र रहता है, अर्थात क्षेत्र की स्थिति कितनी है? क्षेत्र अनादि अनंत है, क्योंकि छह द्रव्यों का अपना अपना जो क्षेत्र है वो तो कायम है, वो अनादि अनंत रहता है। अब 9 नंबर पर, क्षेत्र कितने प्रकार का, ये हुआ विधान। 6 नंबर डाला ना हमने, क्या क्या देखा अभी तक हमने? निर्देश, स्वामित्व, फिर साधन यानी करण, उसके बाद अधिकरण, स्थिति और विधान। विधान यानी प्रकार कितने हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल समय दर्शन का दिया था, तो समय दर्शन कितने प्रकार के? तो 3 प्रकार के। ऐसे क्षेत्र कितने प्रकार के ये पूछा है। समाधान, द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा क्षेत्र एक प्रकार का है, अथवा प्रयोजन के आश्रय से। प्रयोजन हमारा जो क्या हेतु है बताने का। क्षेत्र 2 प्रकार का है, लोकाकाश और अलोकाकाश। क्षेत्र यानी जो आकाश का क्षेत्र है, उसके 2 भेद हमने प्रयोजनवश किए हैं। जितने क्षेत्र में अन्य सभी द्रव्य रहते हैं वो लोकाकाश, जिसमें जीवादि द्रव्य अवलोकन किए जाते हैं। ये लोक शब्द कैसे आया? लोक्यते, लोक्यते ने अवलोकन किए जाते, देखे जाते, पाए जाते। तो जहाँ जीवादि द्रव्य अवलोकन किए जाते हैं, पाए जाते हैं, उसे लोक कहते हैं। ये लोक शब्द कैसे तैयार हुआ? कोई भी शब्द जो है ना, वो धातु से तैयार होता है। कैसे तैयार हुआ? इसके विपरीत यानी इसके उल्टा, जहाँ जीवादि द्रव्य नहीं देखे जाते हैं, उसे अलोक कहते हैं। लोक और अलोक, देखो लोकाकाश अलग बात है और लोक अलग बात है। लोकाकाश तो आकाश का एक हिस्सा है, और लोक कहने से उसमें सभी द्रव्य पाए जाते, उसको लोक कहेंगे। अथवा देश के भेद से क्षेत्र 3 प्रकार का है। हमने जो लोकाकाश का देखते हैं ना, आपको याद होगा ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक और अधो लोक। 9 नंबर का पेज है। मंदराचल की, मंदराचल क्या होता है? मेरु पर्वत। देखो मंदर नाम का मेरु है वो बात अलग, और सुमेरु को भी कहीं कहीं मंदराचल कहते हैं, मंदर भी कह देते। 5 मेरु में एक मेरु का नाम है मंदर, मंदर मेरु कहते हैं। पांचों के नाम मालूम है आपको? बोलो। हाँ, यानी सुदर्शन मेरु, अब पूजा याद करो, अचल, विजय, माली और मंदर है ना। सुमेरु पर्वत सेंटर में, फिर एक पूर्व का, एक पश्चिम का, एक पूर्व का, एक पश्चिम का लेंगे। बीच वाले का, फिर पूर्व का, पूर्व धात की, पश्चिम धात की, पूर्व पुष्करार्ध, पश्चिम पुष्करार्ध, विजय, अचल, दिनमाली और मंदिर और विद्युन वाले,
विद्युन वाले डाबे
ना लेफ्ट में लास्ट में आता है, लास्ट में आता है, यानी यहाँ मंदराचल सुमेरु पर्वत को कहा।
मंदर का अर्थ तो ये मंदराचल यानी बीच वाला सुदर्शन,
सुदर्शन मेरु को ही लेना है, यहाँ ब्रैकेट में लिखा भी है। देखो देश के भेद से क्षेत्र तीन प्रकार का है, मिला मयंक भाई। हाँ, मंदराचल की चूलिका से ऊपर का क्षेत्र ऊर्ध्वलोक है, मंदराचल के चूलिका के ऊपर यानी लाख योजन और ऊपर चूलिका 40 योजन की, और उसके ऊपर से लेकर बाल के ले से ऊपर से लेकर वहां से स्वर्ग की वो बार चालू होती है, वहां ऊर्ध्व कहा। कहीं कहीं त्रिलोक सार में तो मेरु के बेस से ही ऊर्ध्व और अधो दो भाग किए, और ऊर्ध्व लोक में ही बीच वाला मध्य लोक निकाला, ये भी कथन आता है। कथन कैसे अलग अलग पद्धति से आएगी, तो हमें ऊर्ध्व मध्य और अधो ये तीन भेद करना है। तो चूलिका के ऊपर से लेकर लास्ट अंत तक वात वलय तक ऊर्ध्व लोक है, मंदराचल के मूल से, ये मंदराचल का मूल कहाँ है, हाँ 1000 योजन नीचे, हम पृथ्वी के ऊपर है, तो पहली जो 1000 योजन वाली पृथ्वी है ना उसका नाम क्या है, चित्रा। ये त्रिलोक सर भूल गए सब, हजार हजार योजन वाली 16 पृथ्वियां हैं जो सारी वो कर भाग में आती है, तो उसमें से चित्रा जो पृथ्वी है हजार योजन वाली, यानी हजार योजन नीचे तक उसका बेस है। तो मंदराचल के मूल से नीचे का क्षेत्र अधोलोक है, उसको अधोलोक कहेंगे, यानी वो सात नरक उसके नीचे, वो निवोद वाली एरिया उसके नीचे, वात वाले वो सब वहां तक। मंदराचल से परिच्छिन्न अर्थात तत्प्रमाण मध्यलोक है, यानी मध्यलोक की हाइट कितनी होगी, मेरु के तल से लेकर चूलिका के ऊपर तक 1,40,000 योजन, ये मध्यलोक की हाइट होगी। और ऐसा मध्यलोक कितना होगा, 45,00,000 योजन, तो मनुष्य लोक है, एक बाजू एक राजू और ऐसा सात राजू, एक राजू बाय सात राजू। जिस प्रकार ये तो अथवा कह के तीन प्रकार बताए, जिस प्रकार से द्रव्य अवस्थित है उस प्रकार से उनको जानना अनुगम कहलाता है। ये छह अनुगम बताए, जैसे क्षेत्रानुगम कालानुगम ये जो हम कह रहे, द्रव्य प्रमाणानुगम, अनुगम किसको कहना, तो जिस प्रकार से द्रव्य अवस्थित है उस प्रकार से उसको जानना, उसको अनुगम कहते हैं। क्षेत्र के अनुगम को क्षेत्रानुगम कहते हैं, यानी द्रव्य का क्षेत्र जिस प्रकार से अवस्थित है उस प्रकार उसको जानना, ये क्षेत्रानुगम होगा। अर्थात उससे, अर्थात क्षेत्रानुगम से शरीर के निर्देश के समान शरीर सामान्य और मुखादि अंगोपांग विशेष, क्या कहते हैं, जैसे हम शरीर का कथन करते हैं, निर्देश करना है ना कथन करना, तो शरीर का कथन दो प्रकार से होता है, एक तो पूरा शरीर कितने वो तो कहते हैं 6 फुट वाला है, और उसके अंग और उपांग, उसके हाथ उसके उंगलियां उसकी आंखें, इसका अगर अलग अलग वर्णन करेंगे तो वो तो डिटेल हो जाएगा, विस्तार हो जाएगा, यानी वो विशेष वर्णन हुआ, एक सामान्य और एक विशेष। तो क्षेत्रानुगम से शरीर के, यानी शरीर सामान्य और मुखादि अंगोपांग विशेष, इनके निर्देश के समान दो प्रकार का निर्देश किया गया है, यानी क्षेत्रानुगम में निर्देश दो प्रकार का है, क्षेत्र का निर्देश क्षेत्र का कथन दो प्रकार से। अब निर्देश का अर्थ क्या है वो बता रहे, निर्देश प्रतिपादन कथन ये सब एकार्थक है, यानी बताना उसके बारे में, प्ररूपण कहते हैं, प्रतिपादन कहते हैं, कथन, कथन और प्रतिपादन अधिक स्पेसिफिक शब्द है उसके लिए। ओघ से अर्थात द्रव्यार्थिक नय के अवलंबन से, और आदेश से अर्थात पर्यायार्थिक नय के अवलंबन से निर्देश दो प्रकार का है, यानी जो निर्देश दो प्रकार से अलग अलग कहने में आएंगे, एक सामान्य से और उसके भेद करके से। शंका, दोनों नयों की अपेक्षा से निर्देश किस लिए किया जाता है? उसका समाधान, नहीं क्योंकि द्रव्यार्थिक नये में अवस्थित शिष्यों के अनुग्रह के लिए ओघ निर्देश किया जाता है, यानी जो द्रव्यार्थिक नये से जानने वाले जो शिष्य हैं उनके लिए ओघ से निर्देश होता है, तथा पर्यायार्थिक नये में अवस्थित शिष्यों के अनुग्रह के लिए आदेश निर्देश किया जाता है। पर्यायार्थिक नये में अवस्थित यानी वो पर्यायार्थिक नये से जान रहे हैं, विस्तार से जान रहे हैं या जानना चाहते हैं, उनके लिए आदेश से यानी विस्तार से। इन दोनों निर्देशों के अतिरिक्त और कोई तीसरा निर्देश है नहीं, क्योंकि दोनों प्रकार के नयों में अवस्थित जीवों के अतिरिक्त अन्य प्रकार के श्रोताओं का अभाव है, अतएव दो प्रकार से ही निर्देश किया जाता है, एक सामान्य से और एक विस्तार से कथन होता है। ये जरा फुटनोट देख लेते हैं, ऊपर जो सेकंड थर्ड लाइन है मध्य लोगो प्राकृत में, वहाँ एक अकड़ा लिया है, हाँ उसको पढ़ेंगे। मेरु रयम त्रयाणाम लोकानाम मानदंड, मेरु अयम, अयम यानी मेरु, अयम हाँ यह मेरु अयम त्रयाणाम लोकानाम मानदंड, तीन लोक का मानदंड है, मानदंड ने माप माप अस्य अध तलात अधोलोक, यानी इसके नीचे से तल से लेकर नीचे वो अधोलोक है। चूलिका मूलाद ऊर्ध्वम ऊर्ध्वलोक, अच्छा चूलिका के मूल से ऊपर वो ऊर्ध्वलोक बताया, चूलिका मूलाद ऊर्ध्वम ऊपर बताया उन्होंने, कहीं कहीं तो लाख योजन को भी ऊपर बताते हैं। नहीं नहीं नहीं, चूलिका मूलाद अभी ठीक है, क्या पढ़ देखेंगे। मध्यम प्रमाण तिर्यक विस्तीर्ण तिर्यक लोक, कहा नहीं यहाँ नहीं आया है, हमने त्रिलोक सार में देखा था, यहाँ नहीं, यहाँ कहाँ चूलिका का मूल 40 योजन केवल,
वो मध्य लोक में आया ना,
तो मध्य लोक कहाँ पे है, 40 योजन ऊपर।
मध्य लोक मेरु के मूल से मेरु के शिखर तक,
एक लाख 40,
हाँ परंतु एक चाली का 40 एक्चुअली चूली का, क्योंकि ऊपर जो अभी हमने भाषांतर पढ़ा था देखो, मंदर चूली यादव उवरी में उड्ढ लोगो, चूलिका से ऊपर ऊपरी ऊर्ध्वलोक है, और यहाँ जो उन्होंने बताया है जो कोई रेफरेंस, चूलिका मूलाद ऊर्ध्वम ऊर्ध्वलोक है, चूलिका मूल से ऊर्ध्वलोक, तत्वार्थ राजवार्तिक से लिया। मध्यम प्रमाण तिर्यक विस्तीर्ण तिर्यक लोक, और मध्य में जो है आड़ा जो फैला हुआ है वो तिर्यक लोक है। यह च बहु समभूमि भागे रत्न प्रभा भागे मेरु मध्ये अद्य अष्ट प्रदेशो रुचको भवति, यानी जो लोक का जो मध्य भाग है उसके आठ मध्य प्रदेश हैं। आठ क्यों हैं? क्योंकि उसका जो पूर्व पश्चिम विस्तार है, दक्षिणोत्तर विस्तार है, ऊपर नीचे जो है, भले एक राजू है, सात राजू है या ऊपर 14 राजू है, तो कहते वो तो उसका सेंटर जो होता है वो समसंख्या है, और समसंख्याओं का सेंटर एक नहीं होता, दो आते, 10 उंगली है, बीच वाली कौन सी है, एक नहीं दो होगी, ऐसे ऊपर से नीचे नीचे और आगे पीछे भी, तो उसके ऐसे आठ मध्य प्रदेश होते हैं, उसको कहते हैं रुचक प्रदेश। देखो, तस्य उपरितन प्रस्तरस्य उपरिष्टान्नव योजन शतानी यावत् ज्योतिषचक्रस्य उपरितलस्तावत् तिर्यक लोकः ततः परत ऊर्ध्वभाग स्थितत्वात् ऊर्ध्वलोको देशों ने सप्तरज्जु प्रमाणों, क्या कहते हैं, मेरु के मध्य भाग में उसके मध्य प्रदेश है, आठ प्रदेश रुचक प्रदेश है, उसके ऊपर का प्रस्तर है और उसके ऊपर रहने वाले नव योजन शतानी 900 योजन, वहां तक तो ज्योतिष थे हमने देखा ना, 790 से लेकर 900 तक 110 का वो पट्टा है, वो ज्योतिष का है। ज्योतिष चक्र से ऊपरी तल तावत तिर्यक लोक ततः परत ऊर्ध्व भाग स्थितत्वात ऊर्ध्व लोको, यानी वहां से ऊपर उन्होंने ऊर्ध्व लोक बताए। अलग अलग जो पद्धति वो बता रहे, देशों ने सप्त राज्य प्रमाण, कुछ कम सात राज्य प्रमाण है। रूचकस्य अधस्तन प्रस्तरस्य अधो नवयोजन शतानी यावत तावत तीर्यक लोक नीचे 900 योजन लिए उन्होंने, ततः परत अधो भाग स्थितत्वात अधो लोक। अच्छा, उन्होंने क्या किया, रत्न प्रभा के मेरु मध्य में, यानी ऊपर का सेंटर लिया और बेस 900 योजन लिए, नीचे लिया तिर्यक योजन 900 योजन ऊपर से 900 योजन नीचे तक, हम जहाँ रहते उसके ऊपर नीचे। ये अलग से प्ररूपणा है, हमने पहली बार सुनी है इसकी। सातिर्यक सप्तर्यक अधोलोक ऊर्ध्वलोक यो मध्य अष्टादश योजन शत प्रमाण, 1800 योजन वाले मध्य लोग बताया। अभी बताने ऊपर 900, हम जहाँ रहते वहाँ से काउंट किया 900 योजन ऊपर 900 योजन नीचे, यानी मेरू का बेस 1000 योजन नीचे, इन्होंने उसमें से 900 लिए। इसको उन्होंने, ये तो पहली बार मैं ये प्ररूपणा सुन रही हूँ, लास्ट टाइम भी हमने वो फुटनोट नहीं पढ़ी होगी। तिर्यक भाग सीतत्वा तिर्यक लोक इति स्थाना 3-2 टीका, ये अपने है क्या शास्त्र, श्वेतांबर का है। आज आपकी भी आवाज धीमे आ रही। अच्छा, अभी सुनो, ये रेफरेंस बुक का देखो जरा, थानांग जो है शायद श्वेतांबर मत होगा, क्या है, क्योंकि हमने तो ये बात पहली बार सुनी। ये बुक के नाम रहते ना इसके अंदर, इसमें फिर से नहीं दिए, अन्य पुस्तकों में दिए जाते हैं ना। चलो ठीक है, क्योंकि मूल अंगों के नाम तो उन्होंने दिए हैं, हमने तो नहीं दिए। स्थाना ऐसा लिखा है, स्थाना
पेज नंबर 24 पे है।
24
का सूत्र लिखा चार, स्थाना 3-2 लिखो।
24 कौन सा, कहाँ है वो, इंडेक्स में? कहाँ है आप, अंग्रेजी 24 देख रहे हैं? उन्होंने भी लिखा, ये जैन सिद्धांत कोश में स्थानांक, वो तो द्वादशांग का तीसरा अंग है, परंतु वो ओरिजिनल स्थानांग कहाँ प्राप्त है, स्थानांग अपना अंग है, परंतु मूल अंगों के नाम शायद हो सकते कि श्वेतांबरों के हो गए, क्योंकि 1800 योजन वाली बात तो मुझे पता नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते। आगे बढ़ते, 10 नंबर पर आ गए हम। देखो, जिस प्रकार से उद्देश किया जाता है उसी प्रकार से निर्देश होता है, ये जैसा उद्देश है हमारे जो कथन का प्रयोजन क्या है वैसा निर्देश होता है। इस न्याय के अनुसार ओव निर्देश के लिए उत्तर सूत्र कहते हैं। उत्तर से पहला हो गया, अभी दूसरा नंबर का सूत्र बता रहे। ओघेण मिच्छा इट्ठी केवड़ी खेतते सव्वलोगे। देखो, हमारी जो पद्धति क्या है, ओघ मैंने गुण स्थानों में पहले लगाए। अभी अपना जो द्रव्य प्रमाण का विषय हुआ तो मिथ्या दृष्टि कितने हैं ऐसा पूछा था, तो अनंत है। अब मिथ्या दृष्टि कितने क्षेत्र में रहते हैं ये पूछा जा रहा है। ओग निर्देश की अपेक्षा मिथ्या दृष्टि जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं, कितने सर्वलोक में रहते हैं, क्योंकि सूक्ष्म एक इंद्रिय के द्वारा तो पूरा लोक व्याप्त है, तो सर्वत्र मिथ्या दृष्टि जीव पाए जाते हैं। इस सूत्र का अर्थ कहते हैं वह इस प्रकार है। सूत्र में ओग इस पद का निर्देश आदेश प्ररूपणा के निराकरण के लिए आया है, यानी वो तो सामान्य से कहना है, यह मार्गणाओं की बात नहीं है। जब मार्गणा की बात आती तो आदेश से ने कहेंगे नरक गति में ऐसा होता है, तिर्यंच गति में ऐसा होता है। मिथ्या दृष्टि इस पद का निर्देश, पद यानी शब्द और उसका कथन, पद का निर्देश यानी इस शब्द का कथन, सूत्र में एक एक शब्द क्यों आया है उसकी चर्चा चल रही। तो मिथ्या दृष्टि पद का निर्देश शेष गुणस्थानों के प्रतिषेध के लिए आया है, केवल मिथ्या दृष्टियों की बात है, पहले गुणस्थान वालों की। कितने क्षेत्र में रहते हैं इस पृच्छा का फल, पृच्छा ने प्रश्न, इस पृच्छा का फल सूत्र की प्रमाणता प्रतिपादन करना है, क्योंकि पहले ये बात बहुत बार आई थी वैसे द्रव्य प्रमाण कि कितने हैं तो अनंत है, तो डायरेक्ट अनंत है क्यों नहीं बताया, तो कहते स्वकर्तृत्व का निराकरण करने, आचार्य ने अपनी ओर से कुछ नहीं बताया है, जिनेन्द्र भगवान की वाणी के अनुसार प्रतिपादन करते हैं, इसलिए पहले कितने हैं पूछकर फिर उसका उत्तर दिया, इसलिए उसको कहते प्रमाणता, क्योंकि ये प्रमाणता है ना, वो सर्वज्ञ की वाणी के अनुसार मूल सूत्रों के अनुसार बताया है, इसलिए कहते वो प्रमाण है। सर्वलोक में इस पद के पद से क्षेत्र के प्रमाण का निर्देश किया है। यहां सूत्र में लोक ऐसा सामान्य पद कहने पर सात राज्यों का घनात्मक लोक ग्रहण करना चाहिए, सात राजू का घनात्मक यानी सात राजू मल्टीप्लाइड बाय सात राजू मल्टीप्लाइड कर, लोक तो ऐसा अटपटा है ना, ऊपर एक राजू फिर पांच राजू फिर एक राजू फिर आठ राजू और दक्षिणोत्तर सात राजू और ऊपर नीचे चौदह राजू, तो कहते सभी जगह से उसको ऐसा अंदर दाब दो तो उसका क्यूब हो जाएगा, वो कैसा होगा वो बताएंगे अभी। तो कहते सात राज्यों का घनात्मक लोक ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि यहाँ क्षेत्र प्रमाण अधिकार में ये जो उपमा मान है ना उसके बात यहाँ कहेंगे, तो क्षेत्र प्रमाण अधिकार में क्या क्या यहाँ जानेंगे वो बता रहे हैं। ये सारे जो नाम है वो उपमा मान के हैं, एक होता है संख्या मान एक होता है उपमा मान। संख्या मान में कौन कौन सी संख्या आती है, संख्यात असंख्यात अनंत, और उपमा मान में ये पल्ले सागर वगैरह आते हैं, अभी हम इसको पढ़ेंगे गाथा ऊपर पढ़ेंगे। पल्लो सायर सुई पदरो य घनंगुलो य जगसेरी लोय पदरो य लोगो अठ दुमाणा मुणे यवो। पल्लोपम सागरोपम ये उसकी उपमा दी है इसलिए पम शब्द उपमा, पल्ले और सागर भी कहते हैं उसको, पल्लोपम सागरोपम सूचंगुल सूची अंगुल यानी अंगुल इन लीनियर लीनियर जिसको कहें यानी एक लाइन में प्रदेशों की संख्या उसको कहते सूची अंगुल सूचंगुल, प्रतरांगुल यानी सूचंगुल इंटू सूचंगुल तो क्षेत्र रूप हो जाता है वर्ग रूप, प्रतरांगुल और घनांगुल, अंगुल का घन वो घनांगुल होता है। जगत श्रेणी यानी सात राजू, लोक प्रतर या जगत प्रतर कहो यानी जगत श्रेणी इंटू जगत श्रेणी, वो प्रतर यानी स्क्वायर रूप होता है यानी 49 स्क्वायर राजू हो जाएगा, और लोक इन 343 घन राजू होगा। ये आठ मान जानना चाहिए, मान यानी वो तो मेजरमेंट उसका माप, उपमा मान उपमा देकर ये समझाया गया। नीचे देखते अभी फुटनोट पढ़ेंगे, ऊपर खेतते और सव्वल लोगों के लिए एक और दो आंकड़ा लिखा है। विवक्षित जीवै ही वर्तमान काले विविक्षित पद विशिष्टत्वेन अवष्टब्ध आकाशः क्षेत्र, यानी पर्टिकुलर जीवों ने, अभी हम इत्यादि जीव की बात है, विशिष्ट जीवों ने वर्तमान काल में, ये वर्तमान काल महत्व की बात है, जब तीन काल की बात आई वो स्पर्शन में आ जाएगी, वर्तमान काल विविक्षित पद विशिष्टत्वेन यानी पर्टिकुलर पद विशेष के द्वारा जितना आकाश का क्षेत्र रोका है उसको क्षेत्र कहेंगे। अब सर्वलोक ये कहा है ना, सामान्य न तावत मिथ्या दृष्टि नाम सर्वलोक, मिथ्याओं सर्वलोक यानी मिथ्या दृष्टि लोग जीव सभी लोक में पाए जाते हैं। तीन आंकड़ा कहाँ दिया है देखो ऊपर, हाँ 70 अर्जुनम घणो घेतव्यो मिला, जगत श्रेणी सप्तम भागो रज्जु पमासंते, अने जगत श्रेणी का सातवां भाग वो एक राजू है, उसका अर्थ क्या है, सात राजू की एक जगत श्रेणी। अब चार नंबर घेतव्यो घणो घेतव्यो, जगत श्रेणी घन पमाणो लोया यासो स पंच दौवट ठिदो, यानी जगत श्रेणी का घन प्रमाण जो लोकाकाश है, लोकाकाश है, स पंच दौवटी दो, पांच द्रव्य सहित है, लोकाकाश इटसेल्फ लिया और अन्य पांच द्रव्य सहित है, यानी छह द्रव्य हो गए ना। हाँ, 14 रज्जु लो बुद्धि कहो हो ही 70 रज्जु घनो, यानी 14 राजू लोग जो है और वो बुद्धि के द्वारा वो 7 राजू का घन हो जाता है। अब नीचे और पढ़ते हैं, पांच नंबर दिया है, गाथा में दिया है, त्रिलोक पन्नति है, त्रिलोक सार है, पल्योपमस्य सागरोपमस्य च स्वरूपम, ये त्रिलोक पन्नति में बताए, वो तो हम सब पढ़ के आए हैं। अब आगे पढ़ते हैं, देखो अद्धा पल्यस्य अर्धच्छेदेन शलाका विरलीकृत्य प्रत्येकम अद्धापल्य प्रदानम कृत्वा, देखो इसका अर्थ समझेंगे, पल्य के अर्धच्छेद को शलाका करो, पल्य का अर्धच्छेद प्रमाण शलाका करना है और उसी को विरलन करके प्रत्येकम अद्धापल्य प्रदानम कृत्वा, हर एक के ऊपर पल्य लिख दो, पल्य के अर्धच्छेद बार पल्य लिख दो, पल्ले के अर्धच्छेद बार पल्ले लिख दो, अन्यन्य गुणिते और उसके आपस में गुणा करो, यावंतश्छेदास्तावत भी आकाश प्रदेश ही मुक्तावली कृता सुच्चंगुलम इति उच्चते, यानी उसके आपस में गुणा करने की जो बात आएगी, आकाश प्रदेशे ही मुक्त आवलीकृता सुच्चंगुलम इति उच्यते, तदेव अपरेण सुच्चंगुलेन गुणितम प्रतरांगुलम, यानी सुच्चंगुल कैसे आता है,
सुच्चंगुल किसे कहते हैं वो बात बता रहे हैं,
यानी
जगत श्रेणी के जितने प्रदेश है उसको सुच्चंगुल कहेंगे।
नहीं नहीं नहीं,
तो
ये अभी तो अंगुल क्या है, घनांगुल क्या है वो बता रहे हैं, तो अंगुल निकालेंगे, घनांगुल लिखाएंगे, फिर घनांगुल कितने आपस में गुणा कर लेंगे वो बताए, वो फिर राजू का प्रमाण आएगा। देखो जितना द्विरूप वर्ग धारा में पल्य आता है जितने, उतने ही वर्ग स्थान आगे जाने पर अंगुल आता है, जिसको सुच्चंगुल कहते हैं। श्रेणी तो बहुत बड़ा मापा है, सुच्चंगुल तो इतना है, पल्य के अर्धच्छेद बार पल्य को आपस में गुणा किया तो अंगुल आया, वो अंगुल आया इतना। हाँ, फिर से देखो जरा, वो सामने वाले पुस्तक लाना, वो ऊपर के भूगोल की पुस्तक, अभी गुजराती है तो ठीक है चलेगा, हाँ ऊपर के देखो सुचंगुल कैसे लाना, पल्ले इंटू पल्ले इंटू पल्ले कितनी बार, पल्ले के अर्धच्छेद बार, तो सुचंगुल आए यहाँ तक, सुचंगुल निकाल, समझ में आई बात? देखो फिर से आधा पल्ले से अर्धच्छेद, आधा पल्ले कहो या पल्ले कहो एक ही बात है, उसके अर्धच्छेद है उसको विरलन करो, यानी उतने बार करना, क्या प्रत्येक अद्धा पल्ले प्रदानम कृत्वा, हर एक के ऊपर पल्ले लिखो, यानी पल्ले संख्या पल्ले के अर्धच्छेद बार लिखो और आपस में गुणा करो तो सुचंगुल आता है। यहाँ तक ख्याल में आई बात? अंतश्छेदस्तावत भी आकाश प्रदेश ही मुक्तावली कृता सुचंगुलम इति उच्चते, उतने आकाश प्रदेशों को हम क्या कहेंगे, सुचंगुल कहेंगे, यानी क्षेत्र को। इतनी बात, पल्ले को पल्ले के अर्धच्छेद बार लिखकर आपस में गुणा करने पर जो प्रमाण आता है प्रदेशों का, वो तो है अंगुल, जिसको हम सुचंगुल कहते हैं। अब आगे तदेव अपरेण सुचंगुलेन गुणितम प्रतारंगुलम, उसी को दूसरे सुचंगुल से गुणित करेंगे तो प्रतरांगुल होगा। तत् प्रतरांगुलम अपरेण सुचंगुलेन अभ्यस्तम घनांगुलम, उसको और एक सुचंगुल से गुणा करो तो घनांगुल है। यहाँ तक समझ में है घनांगुल कैसे निकालना? हाँ फिर से पेज नंबर 9 पर देखो, पहला पैराग्राफ के बाद यथार्थ में लिखा है ना, पल्ले इंटू पल्ले इंटू पल्ले, ब्रैकेट में क्या लिखा है, पल्ले के अर्धच्छेद बार इज इक्वल टू सुचंगुल, सुचंगुल इंटू सुचंगुल इंटू सुचंगुल इज इक्वल टू घनांगुल। अभी घनांगुल इंटू घनांगुल इंटू घनांगुल कितने बार करना है उसकी बात बताएंगे, तो कहते कि पल्ले के अर्धच्छेद के असंख्या तो भाग बार करना, तब जाके के जगत श्रेणी आएगी और उसको 7 से भाग देंगे तो राजू आएगा। अब ये लोक के सारे प्रमाण राजू में चलेंगे, ये बहुत बड़ा प्रमाण है।
पल्ले के अर्धच्छेद बार दो लिख के गुणा करेंगे आपस में तो पल्ले आ जाएगा, और पल्ले के अर्धच्छेद बार पल्ले लिख के गुणा करेंगे तो सुचंगुल आएगा, तो सुचंगुल और पल्ले में नहीं नहीं वो तो मैं सोच रहा था कि सुचंगुल और पल्ले में आपस में कौन लिख कैसे करने का,
जितनी वर्गशाला का पल्ले की है उसके दो गुना अर्धच्छेद इसकी है सुचंगुल की।
नहीं नहीं
जिस वर्ग स्थान, जैसे हमारे द्विरूप वर्ग धारा है 4, 16, 256 पनट थी, दूसरे स्थान पर कौन है 16 है और चौथे स्थान पर पनट थी, ऐसा ही असंख्यात वे स्थान पर पल्ले है और दो गुना असंख्यात करेंगे तो अंगुल सुचंगुल, यानी पल्ले का वर्ग का वर्ग का वर्ग का वर्ग का वर्ग कितने बार करो, असंख्यात बार करो, तब जाके अंगुल आएगा। तो यहाँ तो द्विरूप वर्ग धारा में वर्ग का वर्ग बताते हैं और यहाँ हमको डायरेक्ट निकालना है, तो पल्ले इंटू पल्ले इंटू पल्ले कितने बार करना, तो पल्ले के अर्धच्छेद बार करना, तो उसमें उतनी बार वर्ग 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 हो जाएगी। दूसरी भाषा में बात में बताऊ आपको, द्विरूप वर्ग धारा में यहाँ पल्ल्य है, इसका वर्ग 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 करो तो क्या आ जाएगा, अंगुल आ जाएगा, यानी सुचंगुल आएगा। कितनी बार आगे वर्ग स्थान जाना है,
पल्ले के
अर्धच्छेद पर नहीं, पल्ले के वर्गशाला का बार आगे जाना है,
पल्ले के वर्गशाला
पल्ले की वर्गशाला का बार आगे जाना। जैसे हमने चार और पनट्टी देखी थी, विरूप वर्गधारा में पहला स्थान है चार, दूसरा स्थान है 16, तीसरा स्थान है 256 और चौथा स्थान है पनट्टी। ये दूसरा स्थान है और ये चौथा स्थान है। तो हम क्या देख रहे थे, इसकी वर्गशाला का सही, इसकी वर्गशाला का दो गुनी है, 16 की वर्गशाला का 2 है, पनट्टी की वर्गशाला का 4 है। तो वर्गशाला का अभी इसके अर्धच्छेद की बात बताती हूँ। 16 के अर्धच्छेद 4, तो 16 चार बार लिखो और आपस में गुणा करो तो पनट्टी आएगी। सोलह है, उसके अर्धच्छेद 4 है, तो 16 अपने अर्धच्छेद बार लिखकर गुणा करो तो पनट्टी आती है, यानी वर्गशाला का दो गुना होती है। क्योंकि वर्गशाला का क्या है, अर्धच्छेद का अर्धच्छेद वर्गशाला का है।
किसकी वर्गशाला का?
किसी की भी, द्विरूप वर्ग धारा में
अर्धच्छेद के अर्धच्छेद वर्गशाला का है। अर्धच्छेद के अर्धच्छेद
16 का अर्धच्छेद 4 है, 4 का अर्धच्छेद 2 है, उसकी वर्गशाला। पनट्टी के अर्धच्छेद 16 है, 16 के अर्धच्छेद 4 है, उसकी वर्गशाला। आपने ये नया नया प्रश्न निकाला तो नया नया सुनना पड़ेगा आपको। ये हो गया अपना। और ये द्विरूप वर्गधारा में एप्लीकेबल है, घन धारा में नहीं होगा। देखो, पल्ले इंटू पल्ले इंटू पल्ले, पल्ले के अर्धच्छेद बार करो तो सुचंगुल आता है। अंगुल इंटू अंगुल इंटू अंगुल, घनांगुल आता है। अब आगे की बात हमने पढ़ी नहीं, इसमें से पढ़ के बताती हूँ। धवला में से 11 नंबर के फुटनोट तक है, यानी वो कंटिन्यू है ना 11 नंबर पर, इसलिए वहां से पढ़ रहे। असंख्ययानाम वर्षानाम यावंतः समयः तावत् खंडम अद्धापल्यम कृतम। ये असंख्यात वर्षों के जितने समय होते हैं उतने ने तो अद्धापल्य के होते हैं। तथा असंख्ययान खंडान अपनीय असंख्ययम एकम भागम बुद्ध्या विरलीकृत्य एकस्मिन् घनांगुलम दत्वा परस्परेण गुणिता जगश्रेणी। यहाँ क्या कहते हैं, जब पल्ले की बात आए तो पल्ले के जो है उसके असंख्यात खंड करो और एक भाग बुद्धि से विरलन करो और एक एक भाग के ऊपर घनांगुल दो। अभी मैंने भूगोल की पुस्तक में जो बताया था 9 नंबर के पेज पर, घनांगुल तो कैसा निकाला, अब घनांगुल इंटू घनांगुल इंटू घनांगुल ये कितनी बार लिखना है और गुना करना है। तो कहते पल्ले के अर्धच्छेद के असंख्यात में भाग, अर्धच्छेद के असंख्यात में भाग प्रमाण, घनांगुल को आपस में गुना करेंगे तो जगश्रेणी। देखो देखो, पहले घनांगुल निकाला तो घनांगुल को कितनी बार लिखो, यानी उसका विरलन राशि क्या है, पल्ले के अर्धच्छेद का असंख्यात भाग उसको विरलन करो और हरेक के ऊपर घनांगुल दे दो तो जगत श्रेणी आएगी। आपको लिखना है ना तो लिख लो ऊपर, पहले हम शुरू से लिखेंगे। ऐसा लिखो, पल्ले इंटू पल्ले इंटू पल्ले डॉट डॉट करके पल्ले के अर्धच्छेद बार इज इक्वल टू सूचंगुल। हाँ, पल्ले के अर्धच्छेद बार ऐसा लिखना, पल्ले इंटू पल्ले इंटू पल्ले डॉट डॉट डॉट, कितने बार करना है ऐसा, पल्ले के अर्धच्छेद बार, वो संख्या क्या आएगी, सूचंगुल। अब सूचंगुल रेस टू 3 करो या इंटू 3 बार लिखकर आपस में गुणा करो, ये सूचंगुल का घन प्रतरांगुल होता है, वो लिखने की जरूरत नहीं, हमको घनांगुल से मतलब है। सूचंगुल का घन इज इक्वल टू घनांगुल। अभी घनांग हाँ जो सूचंगुल इंटू सूचंगुल इंटू सूचंगुल तीन बार घनांगुल। भूगोल की पुस्तक में जो लिखा है ना वही है, नौ पेज पर। इसीलिए वो हिंदी और उसके पेजेस समान किए। ओ अटपटा करना पड़ा पहले तो अलग से किया था सारा, अभी घनांगुल इंटू घनांगुल करना, घनांगुल इंटू घनांगुल इंटू घनांगुल।
हाँ
डॉट 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 कितना करना, पल्ले के अर्धच्छेद के असंख्यातवे भाग बार, अर्धच्छेद के असंख्यातवे भाग बार। ऐसा गुणा करने पर क्या आएगा, जगत श्रेणी। ये कौन सी धारा में आएगी, घनांगुल की, घनांगुल द्विरूप घन धारा में आता है, जगत श्रेणी भी घन धारा में आती है, और लोक आए वो घना घन धारा में आएगा। ख्याल में आई ना बात, सूचंगुल द्विरूप वर्ग धारा में आया था, अंगुल उसका घन आया घन धारा में आया, तो जगत श्रेणी भी घन धारा में आ जाएगी। आगे बढ़ेंगे, अभी हम ऊपर पढ़ेंगे 11 नंबर के पेज रेगुलर। अच्छा ये कंप्लीट करते हैं, फिर से ये पहली लाइन पढ़ते। असंख्यानाम वर्षानाम यावंत समयः तावत् खंडम अद्धापल्यम कृतम, यानी पल्ले के इतने अर्ध असंख्यात खंड करो, उसी को हमने अर्धच्छेद का असंख्यात भाग किया। तथा असंख्यान खंडान अपनीय असंख्ययम एकम भागम बुद्ध्या विरली कृत्य, यानी उसमें से एक भाग लेना, उसका विरलन करना। हमारी भाषा में पल्ले के अर्धच्छेद का विरल असंख्यात भाग का विरलन करो, एक एक अस्मिन एक एक के ऊपर घनांगुलम दत्वा, घनांगुल देना यानी वो देय राशि करो। परस्परेण गुणिता आपस में गुणा करो, जगत श्रेणी हमें पल्ले के असंख्यात भाग के एक भाग को ही खंड विरलन करना है ना। हमने क्या कहा, पल्ले के अर्धच्छेद के असंख्यात भाग बार लिखो, उसी का अर्थ उसका विरलन करो, उस पर दे दो, ये सब उसी में समा गया। सा अपरया जगत श्रेणियाभ्यस्ता प्रतरलोक, उसको जगत श्रेणी को अन्य जगत श्रेणी को अभ्यस्त करना यानी गुणा करने पर जगत प्रतर आता है। सा एव स एव उसी को अपरया जगत श्रेणिया संवर्गितो घनलोक, अन्य और एक जगत श्रेणी से गुणित करेंगे तो घनलोक आता है। उसको जगत घन भी कहते हैं, लोक भी कहते हैं, घनलोक भी कहते हैं। आगे चलो, अभी हम पढ़ेंगे रेगुलर 11 पेज पर आ गए। इस गाथा में जो लोक का ग्रहण किया गया है उससे जाना जाता है कि यहाँ पर सात राजू के घन प्रमाण लोक का ग्रहण अभिष्ट है। अभिष्ट है वो तो इष्ट है, वो लेना चाहिए। विशेषार्थ, एक प्रदेश वाली सात राजू लंबी आकाश प्रदेश पंक्ति को जगत श्रेणी कहते हैं, जिसको हम लीनियर कहते हैं, यानी एक सिंगल लाइन, कितनी ब्रॉड प्रदेश प्रमाण लाइन, एक 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 प्रदेश एक के सामने रखते जाओ तो इतने प्रदेश हो गए, तब उसको हम जगत श्रेणी कहेंगे। जगत प्रतर का घन नहीं, जगत श्रेणी का घन, जगत श्रेणी इंटू जगत प्रतर, वर्ग नहीं, जगत प्रतर इंटू जगत श्रेणी। जैसे दो का वर्ग चार है और चार को दो से गुणा करो तो दो का घन आठ आता है। ब्रह्मा समझ में आई बात, वर्ग और वो संख्या आपस में गुणा करेंगे तो घन आता है। विशेषार्थ, यानी वो सिंगल लाइन में अगर प्रदेशों की पंक्ति करेंगे तो ये हमारा जगत श्रेणी आया। तथा जगत श्रेणी के वर्ग को जगत प्रतर और घन को, किसके घन को, जगत श्रेणी के घन को घन लोक कहते हैं। गाथा में इसी क्रम से जगत श्रेणी, जगत प्रतर और लोक पद का ग्रहण हुआ है। इससे ज्ञात होता है कि यहाँ पर लोक से घनलोक का अभिप्राय है, यानी यहाँ जो लोक कहने में आता है उसको घनलोक कहेंगे। शंका, यदि यहाँ पर इसी घनलोक का ग्रहण किया जाता है तो पांच द्रव्यों के आधारभूत आकाश का ग्रहण नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि उस लोक में सात राजू के घन प्रमाण वाले क्षेत्र का अभाव है। और यदि सद्भाव माना जावे तो यहाँ क्या कहते हैं, अगर इसको आप घनलोक कहेंगे तो जो पांच द्रव्यों का आधारभूत जो लोकाकाश है उसका यहाँ ग्रहण नहीं हो रहा है, क्योंकि उस लोक में सात राजू का घन वाला वो लोक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, उसके लिए अपनी ओर से बात बता रहे, उसके लिए गाथा नंबर 6। हिट्ठा मज्जे उवरिम वेत्तासन झल्लरी मुइंगणी हो मज्जिम विद्धारेणय चौदस गुणमायदो लोगो। नीचे, अभी नीचे हिट्ठा ने नीचे, मज्जे ने मध्य में, ऊपर ने ऊपर, और उसके लिए दृष्टांत क्या है, वेत्तासन ने वेत्रासन, वेत का मुंडा होता ना ऐसा, ये आपने देखा होगा, वेत यानी वो तो आप केन से बनाए हुए जो स्टूल वगैरह होते हैं घर में रखने वाले, आपने ऐसे शेप के देखे होंगे, ऐसा देखा। अब ये तो पूरा मृदंग जैसा, अभी ऐसा भी होता है ना कि ऊपर ऐसा है और नीचे ऐसा, ये ऐसा स्टूल बनाते हैं, वो वेद से बनाए जाते हैं। आगे लिखे हुए पिक्चर भी है, शुरू में पिक्चर दिए होते। देखो यहाँ पर है,
पहला पेज निकालना,
ये नीचे का जो है ना, देखो विषय सूची के बाद चित्र सूची लिखा है वहाँ पर। ये जो मृदंगाकार लिखा है वो नीचे का जो शेप है उसको वेत्रासन कहते हैं। आसन है बैठने का, और ये ऐसे छोटा सा ऐसे जो होता है उसको कहते हैं वेत्रासन,
मुंडा
कहते हैं उसको, एक्चुअली उसको मुंडा ही कहते हैं, वो मुंडा वाला अलग था, पंजाबी का मुंडा नहीं। देखो ये गाथा बताते हैं, शंकाकार की शंका है कि नीचे वेत्रासन यानी वेद का मुंडा के समान, मध्य में झल्लरी के समान यानी गोल ऐसा, और ऊपर मृदंग के समान आकार वाला तथा मध्यम विस्तार से अर्थात एक राजू से 14 गुना आयत यानी लंबा लोक है, यानी जो मध्य में एक राजू है उससे 14 गुना करो इतना लोक है। अब कहते हैं लोगो अकट्टिमो खलु अनायिनिहणो सहावनुवत्तो जीवा जीवे हि पुडो निच्चो तलरुख संठानो। यह लोक निश्चयतः अकृत्रिम है, अकृत्रिम ने किसी ने बनाया नहीं है, त्रिलोक पन्नति में भी ये सारी गाथा है, त्रिलोक सार में भी है, यानी किसी ने बनाया नहीं। जो अन्य मति कहते हैं ना ये ईश्वर ने सृष्टि की उत्पत्ति की, उसका निराकरण होता है, ये तो यहाँ तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, उसका खंडन हो जाता है अपने आप। अकृत्रिम है, अनादि निधन है, यानी इसका कभी नाश नहीं होने वाला और ना ही कभी इसकी उत्पत्ति हुई है और है, स्वभाव से निर्मित है, स्वभाव से ही है, जीव और अजीव द्रव्यों से व्याप्त है, यानी कौन कौन से है, सभी हाँ। नित्य है तथा ताल वृक्ष के आकार वाला है। ताल वृक्ष वो कैसे, नीचे से उसका जो स्टेम होता है ना, ट्रंक, वो इस तरह से होते, फिर ऊपर उसकी शाखाएं होती, इस तरह से ताल वृक्ष के ताल या नहीं, वो तो नारियल नहीं, वो तो ताल नाम का वो
नारियल नहीं, ताड़,
नारियल नहीं, तार तार के ताल, तार तार यानी लोग का आकार इमेजिन करो ना, नीचे ऐसा है फिर ऊपर थोड़ा फैला। आठ नंबर का, अभी उसकी शंका नहीं पूरी, पहले उसने ये सारे मूल श्लोक प्रस्तुत किए। आठ नंबर, लो यस्य विखंभो चौपयारो यहो इनायवो सत्यकगो य पंचेकगो य रज्जु मुने यौवा सत्त एक फिर पंच एक, यानी पूर्व पश्चिम विस्तार कैसा है, नीचे सात राजू फिर एक राजू फिर पांच राजू फिर एक राजू है ना। लोक का विष्कम्भ यानी विस्तार चार प्रकार का ऐसा जानना चाहिए, जिसमें से अधोलोक के अंत में सात राजू यानी नीचे बेस, मध्य लोक के पास एक राजू, ब्रह्म लोक के पास पांच राजू और ऊर्ध्व लोक के अंत में एक राजू विस्तार जानना चाहिए। ये पूर्व में कही गई सूत्र गाथा है, अप्रमाणता को प्राप्त होती है। ये प्रश्न क्या है, ये तो गाथा है तो मूल से लिए उन्होंने और यहाँ जो सात राजू का घन ये जो है वो घटित नहीं होता कहते, अगर उसको मानेंगे तो ये गाथा है अप्रमाण हो जाएगी। अब यहाँ उक्त शंका का परिहार करते हैं, यानी ये समझते हैं कि लोक बिल्कुल ऐसा क्यूबिकल सात राज्यों का घन है, ऐसा नहीं है, उसके एरिया हम जिसको उसका अगर निकालेंगे गणित करेंगे तो वो भी उतनी हो जाएगी। ये क्या कहते हैं, देखो यहाँ तो ये सात राज्यों फिर एक राज्य फिर पांच राज्यों फिर एक राज्य ऐसा कहा, और आप कहते हैं सात राज्यों का घन है, नीचे वेत्रासन के समान है और आप कहते हैं वो तो क्यूबिकल है, ये उसकी शंका है। यानी पूरी एरिया हम कैलकुलेट करेंगे तो उतनी सात राज्यों के घन प्रमाण होने वाले, उसने तो डायरेक्ट शेप वाइज ही समझ लिया उसको क्यूबिकल होगा क्या क्या। हाँ। समाधान, यहाँ उक्त शंका का परिहार करते हैं। इस प्रकृत सूत्र में लोक ऐसा पद कहने पर पांच द्रव्यों के आधारभूत आकाश का ही ग्रहण किया है, अन्य का नहीं, क्योंकि लोकपूर्ण समुद्घातगत केवली कितने क्षेत्र में रहते हैं, सर्व लोक में रहते हैं, इससे उक्त बात सिद्ध होती। जब लोक कहने से तो पूरा लोक आ जाएगा, जिसको हम लोकाकाश कहते हैं, जिसके आधार से अन्य पांच द्रव्य हैं, उसी की बात यहाँ लोक से सिद्ध होती है। यदि लोक सात राजू के घन प्रमाण नहीं है तो लोकपूर्ण समुद्घातगत केवली लोक के संख्यात्वे भाग में रहते हैं, इस प्रकार कहना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता सात राज्यों का घन और कुछ अन्य मान लेते हैं तो वो सात राज्यों के 343 घन नहीं कहते, उसकी संख्या तो अभाग कहते हैं, एक बात। और मृदंगाकार लोक के प्रमाण को देखकर अर्थात उसकी अपेक्षा से लोकपूरण समुद्घातगत केवली का घनलोक के संख्यात्वे भाग में रहना असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि गणना करने पर मृदंगाकार लोक का प्रमाण घन लोक के संख्यात्वे भाग पाया जाता है, वह इस प्रकार है। यानी उसको अगर हम मृदंगाकार ही केवल इतना ही मानेंगे तो वो भी अलग सिद्ध हो जाएगा, उसको बताते हैं, पूरा पढ़ेंगे तो आपकी वो तो उसके चित्र भी बताएंगे। 14 राजो प्रमाण आयत, 1 राजो प्रमाण विस्तृत और गोल आकार वाली, ऐसे मृदंगाकार लोक की सूची को लोक के मध्य से निकालकर पृथक स्थापित करना चाहिए। ये पुस्तक के प्रारंभ के चित्र हम देखेंगे। ये मृदंगाकार लोक में से वो बीच वाली जो एक राजू वाली एरिया है ना, उन्होंने बताया डॉटेड पहला चित्र में, वो कैसी गोलाकार नली जैसे उन्होंने उसमें से निकाली, मृदंगाकार में से ये मृदंगाकार लोक यहाँ ऐसा बताया। मृदुंगाकार में क्या होता है, नीचे की गोल एरिया हो जाती है, और ऐसे तो गोल नहीं है। मृदुंगाकार मानने में क्या डिफरेंस है, मृदुंग कैसा होता है तो गोलाकार होता है और ऐसे ऊपर तक चला जाएगा, वो गोल का गोल ही रहेगा। मृदुंगाकार मानने से देखो ये मृदुंग होता है, हम खड़ा कर दिया ना मृदुंग, ये भी गोलाकार है और नीचे आया वो भी गोलाकार है, ये मृदुंग हो जाएगा। मृदुंगाकार मानने से उसके एरिया अलग हो जाएगी। ये लोक यथार्थ में कैसा है, ऐसा तो राजू है पर ऐसा सात राजू तक फैला हुआ है, उसको नहीं मानकर टोटली मृदुंगाकार मानने में क्या दोष है अगर, और इसीलिए उसकी शंका हुई। मृदुंगाकार लोक में तो नीचे तो वेतरासन के, अभी उल्टा लिया मैंने, ऐसा ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा, ये हुआ मृदुंगाकार। तो ये बीच वाली एरिया उन्होंने ये नली जैसी अलग से निकाली एक राजू वाले। अभी इसके आगे पढ़ेंगे, बीच बीच में आपको चित्र भी देखना पड़ेगा। यानी अगर हम मृदुंगाकार ही मानेंगे तो क्या दोष होगा कि जो पूरी सात राजू ऐसे एरिया है वो पूरी कवर नहीं होगी तो संख्या का भाग मानना पड़ेगा, सात राजू का घन वाली एरिया नहीं होगी। मृदुंगाकार शेप पूरा टोटल मानने में ये दोष है, वैसा गोलाकार मृदुंग होता है वैसा लोकाकाश नहीं है। तो मृदुंगाकार की एरिया कैलकुलेट करके दिखा रहे हैं, तो पहले मैं वो गोलाकार वो बाजू निकाला, फिर से पढ़ते इसको। यानी मृदुंगाकार लोक मानेंगे तो हमारा जो लोक की एरिया 343 घन राजू है, तो मृदुंगाकार अगर मानेंगे वो संख्यात्व भाग प्रमाण आता है, वो कैसे उसको बता रहे हैं। यहाँ लिखा ना, गणना करने पर यानी कैलकुलेट करने पर मृदुंगाकार लोक का प्रमाण घन लोक के संख्यात्व भाग पाया जाता है, मिला कहा मैं पढ़ रही हूँ, वही इस प्रकार है। यानी पहले मृदुंगाकार मानेंगे तो उसके एरिया कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए बता रहे 14 राजू प्रमाण आयत यानी लंबी, एक राजू प्रमाण विस्तृत और गोल आकार वाली, यानी एक राजू उसके डायमीटर वाली, ऐसी मृदुंगाकार लोक की सूची को, सूची यानी वो बीच वाली वो नली हमने निकाल ली, लोक के मध्य से निकाल करके पृथक स्थापित करना चाहिए। यानी पूरे लोक में से वो नली हमने वो एक राजू और ऐसी 14 राजू वाली और इसका डायमीटर है एक राजू, ये निकाला अलग से निकाला। इस प्रकार से स्थापित करके अब उसके फल अर्थात घनफल को निकालने का विधान करते हैं। हमारे पास ये गोल एरिया है तो ये गोल एरिया का घनफल क्षेत्रफल निकालेंगे, उसको 14 राजू से गुणा करेंगे, यही तरीका है ना, वह इस प्रकार है। मुख में तिर्यक रूप से गोल, तिर्यक यानी आड़ा, ये जो है ना ये मुख आड़ा जो है तिर्यक रूप से गोल, और आकाश के एक प्रदेश प्रमाण बाहल्य वाली इस पूर्वोक्त सूची की परिधि, यानी इसकी परिधि सरकमफेरेंस 371/113 इतनी होती है। ये आगे गाथा नंबर 14 में ये बताया है, क्योंकि परिधि कैसे निकालते हैं मालूम है ना, बाईस पाए होता है ना, यानी करीबन स्थूल रूप से तिगुना व्यास हो जाता है। 14 नंबर की गाथा कहाँ है, पेज नंबर कितना है, 42 पेज, हाँ मैंने लिखा है इसमें पेज नंबर 42। हाँ देखो नीचे उदाहरण लिया ना, यहाँ पर मंडलाकार क्षेत्र की विशेषार्थ नीचे का पेज नंबर 42, यहाँ पर मंडलाकार क्षेत्र की, मंडलाकार ने गोलाकार वो मंडल प्रमाण, परिधि का प्रमाण लाने की प्रक्रिया बतलाई गई है। स्थूल मान से परिधि का विस्तार व्यास से तिगुना ले लिया जाता है, यथा वासो तिगुणों परिधि। ये त्रिलोक सार में बताया था, ये तो स्थूल है और एग्जैक्ट निकालना है तो इंटू टेन उसको 10 से गुणा करो, उसके वर्ग को 10 से गुणा करो, सबका वर्गमूल निकालो। इससे भी सूक्ष्म प्रमाण 10 का वर्गमूल बतलाया गया, या डायरेक्ट 10 के वर्गमूल से गुणा करो। यथा विखंभ वग्ग दह गुण करणी वट्टस परिरवो होदी। प्रस्तुत ग्रथा में इस सूक्ष्म प्रमाण से भी सूक्ष्मतर प्रमाण निकालने की प्रक्रिया बतलाई। ये सब प्रक्रिया बतला के 371/113 आ गए, वो हम जब आएगा विषय तब उसको बात करेंगे। यानी उन्होंने सूक्ष्म से सूक्ष्म पद्धति से वो करके बताया, तो यहाँ डायरेक्ट उसका पहले ये क्या कहना चाहते हैं, तो हमने वो जो लंबा है ना एक गोल, मुख का गोल, उसका क्षेत्रफल निकाला, वो 371/113 आया। स्थूल रूप से 3 गुना आता है, यहाँ सूक्ष्म रूप से बताएं इतनी होती है। इस परिधि के प्रमाण को आधा करके पुनः उसे एक राजु विषकंभ के आधे से गुणा करने पर उसके क्षेत्रफल का प्रमाण 371/452 इतना होता है। ये तो परिधि निकाली, अब परिधि को क्या किया उन्होंने, ऐसा गोल था हमारे पास, कोई पेपर है क्या मेरे पास, था अभी एक मिनट देखती हूँ। ये 14 राजु लंबी ये ऐसा गोल निकाला है, एक कागज आप गोलाकार ऐसा फोल्ड करके देखो तो ये ऐसा निकाला, और इसके अभी हम बड़ा करना पड़ेगा इसको, इसका क्षेत्रफल निकाला है, परिधि तो निकाली, ये परिधि है, ये पेपर का एक बॉर्डर एज है वो उसकी परिधि है। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है ना गोल का, तो क्या किया हमने, ये कितना है ऐसा, ये इसकी परिधि है, और इसका ये इसका पूरा एरिया निकालनी है, इसकी एरिया निकालनी है, तो उसको तो त्रिज्या से गुणा करना पड़ेगा। देखो यानी एक राजु उसके डायमीटर है और उसका आधा होता है उसको त्रिज्या कहते हैं, उससे गुणा करना पड़ेगा। देखो फिर से इस परिधि के प्रमाण को आधा करके पुनः उसे एक राजु विषकंभ के आधे से गुणा करने पर उसके क्षेत्रफल का प्रमाण 371/452 इतना होता है। अब हमें लोक के अधोभाग का घनफल लाना इष्ट है। ये तो बीच वाले नली का निकाला, इसका भी आधा किया और वो उसके उससे गुणा किया उसको। अब हमें लोक के अधोभाग का, इसलिए उस क्षेत्रफल को 7 राजुओं से गुणा करने पर 7 राजु प्रमाण लंबी और 1 राजु प्रमाण चौड़ी उक्त गोल सूची का घनफल 5.337/452 इतना होता है। देखो यहाँ क्या किया था, अब नीचे की बात कर रहे हैं, नीचे कैसा है, अब ये पेपर थोड़ा ऐसे इमेजिन करो, ऐसा लेके ऊपर तो एक राजू वाला है छोटा और ये नीचे बड़ा 7 राजू वाला हो जाता है, तो इसकी एरिया निकालनी है अपने को, तो उसका हम इमेजिन करेंगे। अभी ऐसा ये ना ये वेत्रासन, अब इसको स्प्रेड करना है, तो स्प्रेड करके क्या होगा, ऊपर तो उन्होंने ऐसा देखो ये ऐसा था गोल, उसको बीच में खोल दिया, ऐसा पलटा दिया तो ये ऐसा हो गया, नीचे का भी, नीचे का एक्चुअली ओरिजिनल इतना ही था, उसको और फैला दिया तो ऐसा हो गया पूरा। तो ये कितना हो गया, ये 371 बटे 113 थे। क्योंकि उसका थिकनेस, उसके एरिया निकालनी, उसके थिकनेस भी कुछ है। देखो खाली वो राउंड ऐसा नहीं फैला है, वो जो पूरा घन वो भी ऐसा हुआ ना, ब्रॉड हुआ कि नहीं हुआ। जैसे ये ऐसा गोल, अभी ऐसा ये गोल बना उसका, ऐसा सॉलिड था। फिर हमने कट किया, कट किया, कट किया तो आधा ही कट किया सेंटर तक, और ऐसा फैला दिया। यानी इसकी जो विड्थ होगी वो त्रिज्या प्रमाण हुई, और ये जो हुआ उसका परिधि है, परंतु ये अंदर वाली परिधि छोटी होगी, इसलिए उसको परिधि को भी आधा किया और त्रिज्या से उसको गुणा किया। अब नीचे का भी जो है पूरा सात राजू वाला, तो उसका सॉलिड था, उसका आधा करे तो 3.5 राजू वाला तो हो जाएगा ना उसकी विड्थ से, और स्प्रेड भी हो जाएगा। यानी नीचे का अगर स्प्रेड करेंगे हम तो ऐसे उसकी तो नीचे की भी एरिया हो जाएगी। तो ये पूरी एरिया हमको कैलकुलेट करनी है, क्योंकि केवल वो राउंड हमने खाली वो थिन पेपर नहीं स्प्रेड किया, वो सॉलिड चीज हमने स्प्रेड की। लास्ट टाइम तो हमने बहुत मेहनत की थी इसकी, मैंने तो वो मिट्टी का होता ना प्लास्टिक का, उसको भी स्प्रेड किया था, आपके घर से मंगवाई थी।
क्ले
हाँ, और रोटी बनाते समय उसको भी स्प्रेड करके देखा वो ये गूंथते है ना पहले आटा, उसका भी बना के देखा था।
तो सब आ गया
हाँ देखो देखो, थोड़े इमेजिन करने की कोशिश करेंगे हम इसको। यानी वो केवल वो पोला नहीं है, पूरा सॉलिड है, इसलिए उसको कट करके हम स्प्रेड करते हैं तो उसके एरिया कैलकुलेट करने में आसान होती है। मैं ऊपर जो ब्रैकेट है ना, देखो आगे ना, उसके आगे फिर पढ़ती हूँ मैं, इस परिधि के प्रमाण को आधा करके पुनः उसे एक राजू विष्कम्भ के आधे से गुणा करने पर उसके क्षेत्र का क्षेत्रफल का प्रमाण इतना आता है, वो हमने निकाला। परिधि के द्वारा वो उसके उसका आधा किया और त्रिज्या के आधे से उसको गुणा कर दिया। अब हमें लोक के अधो भाग का घनफल लाना इष्ट है, इसलिए उस क्षेत्रफल को 7 राजुओं से गुणा करने पर 7 राजू प्रमाण लंबी और 1 राजू प्रमाण चौड़ी उक्त गोल सूची का घनफल इतना होता है। मैंने उसको 7 से गुणा किया, 371 divided by 452 into 7। हाँ, तो वो इतना 5 पूर्णांकों में बताएं, 337/452 इतना होता है। फिर सूची रहित 14 राजू लंबे लोक रूप क्षेत्र के मध्यलोक के पास से 2 खंड करके, ये बीच वाली जो नली निकाली थी उसके 2 खंड करके, उनमें से नीचे के अर्थात अधोलोक संबंधी खंड को ग्रहण कर उसे एक ओर से यानी ऊपर से लगाकर नीचे तक काट कर पसारने पर सूप के आकार वाला क्षेत्र होते हैं, सूपा के आकार, ये सूप जिसको कहते हैं ना, सुपड़े के आकार का हो जाता है, क्योंकि बीच वाली नली निकाली है ना, और फिर बाकी जो रिमेनिंग क्षेत्र है उसकी बात उसको स्प्रेड कर रहे हैं। हाँ, विशेषत यहाँ पर शंकाकार मृदंगाकार लोक को दृष्टि में रखकर यह कथन कर रहा है। यानी लोकाकाश का जो आकार, जो नीचे स्क्वायर बेस है, बीच में भी एक राजू भाई सात राजू है वो नहीं मान रहा है, वो पूरा गोलाकार मान रहा है, मृदंगाकार यानी गोलाकार। तो मृदंगाकार लोक को दृष्टि में रखकर यह कथन कर रहा है। उसका भाव यह है कि कितने ही आचार्य अधोलोक का आकार चारों ओर से गोल ऐसे वेत्रासन के समान मानते हैं, जो नीचे गोल आकार वाला तथा सात राजू चौड़ा है, यानी सात राजू डायमीटर वाला परंतु गोल मानते हैं, और ऊपर क्रमशः घटता हुआ मध्य लोक में गोल आकार वाला तथा एक राजू चौड़ा है। इसके ठीक मध्य में ऊपर से नीचे तक स्थित सात राजू लंबी, ये नीचे के केवल वेत्रासन में से उन्होंने नली निकाली, पूरे ऊपर से नीचे तक से नहीं निकाली, अधोलोक की पहले निकाली, यानी एक राजू ऐसा था तो बीच में ऐसी ये जो नली है उसको नीचे के सात राजू के एरिया घटित कर रहे, पहले उसको कैलकुलेट कर रहे। तो ऊपर से नीचे तक स्थित सात राजू लंबी और एक राजू चौड़ी गोल आकार वाली त्रसनाली है, उसको यदि वेत्रासनाकार अधोलोक के बीच में से निकालकर बचे हुए अधोलोक को एक ओर से ऊपर से नीचे तक काट कर पसार दिया जाए तो उसका आकार ठीक सूपा के समान हो जाता है। यहाँ क्या कहना चाहते फिर से देखो, उसने मृदंगाकार मान लिया और नीचे का वेत्रासन अभी है ये सात राजू लंबा ऐसा गोल उसको मान लिया, अब उसमें से बीच वाला आकार ये गोल निकाल लिया, ये नली यहाँ से निकाल दी, गोलाकार निकाल ली उसमें तो गोलाकार नली निकाली, तभी इसका आकार कैसा होगा ऐसा खुल जाएगा ना। देखो
दोनों को खोलना है और ऊपर,
हाँ ये भी आधा चला जाएगा ना उसके अंदर, यानी ये सॉलिड पूरा खुल जाएगा, नीचे का बेस बड़ा ब्रॉड होगा और ऊपर ऐसे टेपरिंग हो जाएगा, यानी ऊपर तो सिंगल है, यानी लाइन है, पूरा एक राजू निकाल लिया तो एक पॉइंट ऊपर रह जाएगा, यहाँ तो ऊपर एक पॉइंट रह गया, नीचे ऐसा बेस और ऐसा बेस होगा, यानी दोनों ओर का सॉलिड, इसको अंदर बताओ, ये पॉइंट हुआ और ये डॉटेड लाइन उस पार को बता रहे, तो इस तरह से वो हो जाएगा स्प्रेड करने पर। देखो ये इसका बेस ऐसा होगा, यानी आप इसको इमेजिन कर सकते हैं, नीचे ऐसा इसका बेस हो जाएगा, सॉलिड है ना, आप कोई सॉलिड चीज काट कर देखो, उसका सेंटर का निकालो, हाँ क्ले से करो तो ऐसे वो बेस उसका बन जाएगा, ऊपर थिन और फिर नीचे वो ब्रॉड, इस स्वरूपाकार क्षेत्र के मुख का विस्तार 371/113 उतना है। अभी ये कैसे निकाला, क्योंकि
निकाल के बीच वाली जो निकाला था उसका नहीं, वो रख के ही उन्होंने बताया ना,
उसको खोल दिया,
पूरा खोल दिया तो ये ऊपर जो
371/113 आ जाएगा, हाँ यानी सात राजू ऐसा 371/13 इस तरह से हो जाएगा ये, और फिर ये ऐसा फैल जाएगा, ये ऐसा फैल जाएगा, वो नीचे से ऐसा फैल जाएगा, तो ये 371/113 आ जाएगा, हाँ अभी देखो। तो स्वरूपाकार क्षेत्र के मुख का विस्तार 371/113 हुआ और तल का विस्तार 22.15/113 हुआ। हाँ वो ओपन कर दिया,
नीचे बड़ा हो गया ऊपर,
हाँ ऊपर टेपरिंग है ना, हाँ नीचे बड़ा हो गया पूरा, खोल दिया उसने सा। इसे मुख विस्तार से, अर्थात मुख विस्तार के अंत से लगाकर दोनों ओर सात राजू लंबा नीचे की ओर और छेदने पर दो त्रिकोण क्षेत्र और एक आयत चतुर्थक क्षेत्र, इस प्रकार तीन क्षेत्र हो जाते हैं।
एक नदी का और बाकी दोनों का दो ट्रायंगल,
हाँ ट्रायंगल हो जाते हैं, दोनों ओर के दो ट्रायंगल हो जाते हैं। ये बीच वाला अगर हमने छेद दिया ना तो इस तरह से सेंटर में और दोनों ओर दो ट्रायंगल हो जाएगा। उक्त प्रकार से बने हुए इन तीन क्षेत्रों में से पहले आयत चतुरस्र आकार वाले मध्यवर्ती क्षेत्र का घनफल निकालते हैं। आयत ने वो लंबा चौकोन है ना, इस आयत चतुरस्र क्षेत्र का उच्छेद ने ऊंचाई सात राजू है और विषकंभ ने वो चौड़ाई 371/113 इतने राजू है। मुख में एक प्रदेश प्रमाण बाहल्य है और तलभाग में तीन राजु प्रमाण बाहल्य है। वो बीच वाला एक राजु निकाल दिया ना,
वो जो दली निकाल दी और बाकी का जो
बाकी
दो
के सात राजू में से एक रह गया तो छह राजू में से तीन तीन राजू रह गया। देखो ऊपर तो एक प्रदेश थिन है, देखो मैं अभी आपको बता रही हूँ क्या कहना चाहते हैं। ये 371/113 है, सात राजू प्रमाण उसकी ये हाइट है,
वो निकाल दिया।
अब ऐसा ये तीन राज्य है इस तरह से, ये अंदर के आपको वृत्त बता रहे हैं, ऊपर सभी ओर से इस तरह से टेपरिंग हुआ है। तो ये 371/113 ये सात राजू और ऐसा तीन राजू, इसलिए हो गया। ये दो लाइन पढ़ते फिर कल फिर इसको लेंगे। उससे का प्रमाण जो सात राजू है उससे मुख के प्रमाण को गुणा करके तलभाग का बाहल्य जो तीन राजू है उसके आधे से अर्थात डेढ़ राजू से गुणा करने पर, आधा क्यों, यहाँ तीन है तो यहाँ यूरेन है एक प्रदेश है और यहाँ तीन राजू है इसलिए उसका एवरेज निकाला आधा हो जाता है, गुणा करने पर मध्यम क्षेत्र का अर्थात आय चतुर्थ क्षेत्र का घनफल 371/113 गुना सात गुना तीन द्वितीयांश 34 पूर्णांक 107/226 इतना होता है। इसके बाद फिर कल लेंगे इसी पैराग्राफ से लेकर, हाँ कल से तो नहीं है, अब 18 तारीख को आएंगे शिविर के बाद, 18 को सुबह, हाँ लास्ट टाइम भी यही तीसरे लेक्चर पर रुके थे, 18/6 वो 21/6 था 15 साल सेकंड टाइम का प्रवचन नहीं लेक्चर 3। चलो जावानी के ज्ञान से सूझे लो कालो सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो।